नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। नेपाल में तारा एयर के दुर्घटनाग्रस्त विमान में सवार सभी 22 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। विमान में 4 भारतीयों समेत कुल 22 लोग सवार थे और ये पोखरा से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही रविवार को पर्वतीय मुस्तांग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेपाल सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर नारायण सिलवाल ने ट्वीट किया, आखिरी शव भी बरामद कर लिया गया है। दुर्घटना स्थल से बाकी 12 शवों को काठमांडू लाने की व्यवस्था की जा रही है। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता देवचंद्र लाल करण ने कहा, खोज एवं बचाव दल ने आज सुबह एक और शव बरामद किया। सभी 22 शव घटनास्थल से बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा, विमान हादसे में मारे गए 10 लोगों के शव घटनास्थल से आधार शिविर लाए गए हैं। करण ने कहा, 2 शव अब भी घटनास्थल पर हैं। खराब मौसम के कारण अभियान रोका गया है। मौसम के साफ होते ही उन शवों को भी आधार शिविर लाया जाएगा। करण ने कहा कि अब हादसे में 4 भारतीय नागरिकों, चालक दल के 3 सदस्यों सहित सभी 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के समुद्री बंदरगाहों को बंद कर दिया है, जिससे वे 2.2 करोड़ टन अनाज निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। जेलेंस्की ने मंगलवार रात दिए एक वीडियो संबोधन में कहा कि रूस के इस कदम से यूक्रेन से पहुंचने वाले अनाज पर निर्भर देशों में भुखमरी का खतरा बढ़ गया है और एक नया प्रवास संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया, यकीनन रूसी नेतृत्व ऐसा ही चाहता है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि यूक्रेन में रूसी हमले की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 32 मीडियाकर्मी मारे गए हैं। जेलेंस्की ने फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना के साथ हुई एक बैठक में फ्रांस से खाद्य आपूर्ति पर रूसी हथकंडों के आगे नहीं झुकने का आग्रह भी किया। पाकिस्तान की मौजूदा संघीय गठबंधन सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अमेरिकी गुलामों ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की, जबकि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और कीमतें कम की। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के अध्यक्ष ने रविवार को 4 सद्धा के शेखाबाद में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि भारत स्वतंत्र है लेकिन हम गुलाम हैं। इमरान खान ने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए भारत की सराहना करते हुए कहा कि उसने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कच्चे तेल का आयात किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने रूस के साथ 30% रियायती दरों पर तेल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन हमारी सरकार को एक साजिश के तहत हटा दिया गया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तेज प्रगति के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति जरूरी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जीने के लिए 3 साल का समय दिया गया है। वो तेजी से बढ़ने वाले कैंसर का शिकार हो चुके हैं। FSB के एक अधिकारी ने दावा किया कि पुतिन की आंखों की रोशनी भी कम हो रही है। हालांकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रविवार को राष्ट्रपति पुतिन के बीमार होने की अटकलों का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा है। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक FSB अधिकारी ने ब्रिटेन में रहने वाले पूर्व रूसी जासूस बोरिस कारपिचकोव को पुतिन की बिगड़ती सेहत के बारे में जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि वो सिर दर्द से पीड़ित हैं। वो टीवी पर आते हैं तो उनके सामने कागज़ पर बड़े अक्षर लिख कर रखे जाते हैं, जिससे वो आराम से पढ़कर अपनी बात कह सकें। उनकी आंखों की रोशनी लगातार कम होती जा रही है। पेट की सर्जरी ठीक हुई थी लेकिन फिर भी उनकी सेहत खराब हो रही है। मॉस्को, रूस की सरकारी गैस कंपनी गजप्रोम ने सोमवार को पुष्टि की कि रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के कारण उसने नीदरलैंड के एक गैस व्यापारी को मंगलवार से गैस आपूर्ति रोकने का फैसला किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल की शुरुआत में यूरोपीय देशों से रूबल में भुगतान करने को कहा था। पेरिस फ्रांसीसी समाचार एजेंसी BFM TV का कहना है कि यूक्रेन में एक मानवीय अभियान की कवरेज के दौरान उसके पत्रकार फेडरिक लेक लेर्क एम होफ की हत्या कर दी गई। BFM TV के मुताबिक एम होफ की उस समय हत्या कर दी गई जब वो डोनबास क्षेत्र में सिवियेरो दोनेस्तक शहर के पास एक बख्तरबंद वाहन में मानवीय अभियान को कवर कर रहे थे। मालूम हो कि इस क्षेत्र में यूक्रेनी और रूसी सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी है। इमहोफ फ्रांस के नागरिक थे और पिछले 6 साल से चैनल के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने होने वाली वनडे श्रृंखला विपक्षी राजनीतिज्ञों की विरोध रैलियों की संभावना के कारण रावलपिंडी की बजाय मुल्तान में कराने का फैसला किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामाबाद में विरोध रैली की योजना बना रहे हैं। पिछले सप्ताह उनकी रैली स्थगित हो गई थी। पीसीबी ने मुल्तान को विकल्प के तौर पर रखा था और सोमवार को कहा कि 8, 10 और 12 जून को होने वाले मैच अब मुल्तान में खेले जाएंगे। ये श्रृंखला क्रिकेट विश्व कप सुपर लीग का हिस्सा भी है। पाकिस्तान में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच गर्मियों में हो रहा है और मैच शाम 4 बजे से शुरू होंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।